ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. الحمد للہ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے یہاں پہ جمع ہوتے ہوئے، اور جو بھی اللہ کا کلام سننے کے لیے آئے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ آج کے بیٹھنے کو آپ کے حق میں قبول فرما لیں. آج دنیا میں حالات یہ ہیں کہ سب سے بڑی جو جہالت ہے، سب سے بڑا جو اندھیرا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچاننا ہے، اللہ کو نہ جاننا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام جب بولا جائے تو ہمارے اندر کوئی تھرتھراہٹ پیدا نہیں ہوتی، کوئی کپ کپاہٹ نہیں ہوتی، نہ سینے میں کوئی محبت کے دریا جوش مارتے ہیں، نہ اندر میں کوئی ہیبت تاری ہوتی ہے. ایون ایک ادنا سے پولیس والے کو دیکھ کر انسان گھبرا جاتا ہے، ایک ایف بی آئی آفیسر کو دیکھ کر انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ایک جھنڈے والی گاڑی کو دیکھ کے انسان اتنا امپریس ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نام آئے اور کوئی دل میں ہلچل پیدا نہ ہو، اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی پہچان نہیں، اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں. ہم اتنا کچھ پڑھ لکھ جاتے ہیں، بہت بہت ڈگریاں لے لیتے ہیں، 16-16 20-20 سال اپنی زندگی کے ہم دنیا کی تعلیم لینے میں گزارتے ہیں. بے شک وہ انسان کی ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں. انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، وہ جس نے اس کو پیدا کیا، وہ جس نے اس کو رزق دیا، وہ جو اس کی ہر چیز کا مالک ہے، اس کی پہچان ہونا ضروری ہے. سب سے بڑی ضرورت آج یہ ہے کہ انسانیت جو اللہ سے دور ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں جانتی، اپنے رب کو نہیں پہچانتی، ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کی پہچان کرائی جائے. ہم اتنے جاہل ہیں کہ جس کو پہچاننے کے لیے اور جس کو جاننے کے لیے اور جس کی عبادت کے لیے ہم دنیا میں آئے، ہم نے صرف اسی کو نہیں پہچانا، اس کے علاوہ بہت لوگوں کو جاننا بھی، پہچانا بھی، دنیا جہان کی چیزیں سیکھی بھی. حالانکہ وہ ہستی سب سے زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو پہچان کر، اس کی حمد بیان کر کے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ علم والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، اللہم انت احق من ذکر، اے اللہ میں کہاں سے لاؤں وہ زبان یا وہ بات یا وہ طریقہ جس سے تیرا ذکر کیا جا سکے. تو سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ تیرا ذکر کیا جائے، کوئی تیرے جیسا نہیں، کوئی اس لائق نہیں کہ جس کو یاد کیا جائے تجھ سے زیادہ. آکومن عبد، کوئی اس لائق نہیں جس کی عبادت کی جائے تیرے سوا، تو ہی حقدار ہے اس کا. اجود من سئل، کوئی ہے تیرے جیسا سخی، کوئی ہے تیرے جیسا مددگار جس سے سوال کیا جائے. انت الملک لا شریک لک، تو وہ بادشاہ جس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی تیرا شریک ہے ہی نہیں. تعریف کرنے والے تو تیری تعریف کر ہی نہیں سکتے. آنکھوں کی پرواز وہاں تک ہو نہیں سکتی، خیالات وہاں تک پہنچ نہیں سکتے جہاں اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہم جو تعریف کریں تو ہم تو ظاہر ہے کچھ نہیں علم رکھتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, اے میرے رب تیری تعریف ویسے ہی ہے جیسے جس لائق تیری ذات ہے اور جتنی عظیم تیری سلطنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اے اللہ میں کیسے شمار کروں تیری تعریف, کیسے کروں, تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود کر دی, کیونکہ ہم تو تیری تعریف بھی نہیں بیان کر سکتے, ہم وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتے جو تیری تعریف کا ہے. یہ دنیا جس میں میں اور آپ مشغول ہیں نا, مصروف ہیں, یہ تو قارون کو بھی ملی تھی, یہ حامان کو بھی ملی تھی, یہ فرعون کو بھی ملی تھی اور نمرود کو بھی ملی تھی, وہ یہ سب کچھ پا چکے تھے جس کی آج ہم خواہش کرتے ہیں. ہماری ابھی یہ وش ہے کہ ہمیں یہ سب مل جائے, تمنا ہے. ہو سکتا ہے ہمیں پوری زندگی بھی, اور وہ ظاہر ہے 99% تو یہی چانس ہے کہ ہمیں پوری زندگی بھی محنت کے بعد بھی یہ سب کچھ نہیں مل سکتا جو قارون کو ملا تھا, جتنے خزانے اس کے پاس تھے, یا جو نمرود کی بادشاہت تھی, یا جو فرعون کی بادشاہت تھی, اتنی بڑی بادشاہت ہم میں سے کسی کو نہیں ملنے والی. تو جو ہماری تمنائیں ہیں نا, جو ہماری ابھی ڈیزائرز ہیں, وہ ان چیزوں کو پا چکے تھے, ان کو مل چکی تھی, سب کچھ مل چکا تھا جو کوئی انسان کبھی بھی چاہ سکتا ہے اپنے لیے. اور پوری لسٹ بنائی جائے نا, مجھے یہ یہ چاہیے, تو وہ ان سب چیزوں کو پا چکے تھے, لیکن کیا ان کو کامیاب کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ چیزیں ان کو وہ عزت دلا سکی جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی بھی وہ چیز نہیں تھی جو فرعون کے پاس تھی, نہ مال تھا, نہ خزانے تھے, نہ محافظ آگے پیچھے دوڑتے تھے, نہ ایک بڑی سلطنت تھی, نہ محل تھے, نہ زرق برق لباس تھے, نہ کوئی ہٹو بچوں کا شور تھا, مگر وہ سب سے زیادہ عزت والے انسان, سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان, حتیٰ کہ کافر جب لکھتا ہے اپنی کتاب موسٹ سکسیسفل پیپل, تو ان کا نام سب سے اوپر لکھا جاتا ہے ہسٹری. کیوں, کیا نتیجہ نکلا اس سے؟ اسے پتا چلا نا کہ دنیا کا مل جانا آپ کو عزت نہیں دلا دیتا, اور دنیا کا کم ہونا یا چھن جانا پستی کی نشانی نہیں ہے. ہاں, اللہ راضی جس سے ہو جائے وہ عزت والا ہے, اور جس سے اللہ ناراض ہو وہ ذلیل اور پست ہے. جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا, اور جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ بھی نہیں ملا, چاہے اس کے پاس کتنے ہی بڑے محل اور کتنے ہی بڑے خزانے. تو میری زندگی کا تو ہر تار, ہر تعلق, ہر ضرورت میرے رب سے جڑی ہوئی ہے. میں ایک ایک پل میں اس کی محتاج ہوں. میری آنکھوں کے چراغ اسی نے روشن کیے, میری کانوں کے ٹیلی فون اس نے سلامت رکھے, میری زبان جو آج بول رہی ہے اس کی دی ہوئی طاقت سے بول رہی ہے, میرے ہاتھوں کی جو حرکت ہے یہ قوت اس نے دی, میرے دل نے جو دھڑکنا سیکھا, جو دھڑکنا اس کو سکھایا, اور جو دھڑکتا جا رہا ہے اسی کے اذن سے, پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چل رہی ہیں اسی کے کن کہنے سے, گردے کی 10 لاکھ چھلنیوں کو چلا رہا ہے, کون سا یورولوجسٹ ہے جو میرے گردے کو چلا رہا ہے, میں کر رہی ہوں یا میری ماں کر رہی ہے یا میرے کوئی اور کر رہے ہیں, اللہ کر رہا ہے. سوچے صرف میرے یہ دو گردے چلانے میں بھی میرا اختیار نہیں, ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا اذن چاہیے. صرف ایک گردے کی مثال اگر لے لینا, اتنے کروڑوں انسان ہیں جن کے گردے چل رہے ہیں, خون الگ ہو رہا, پیشاب الگ ہو رہا, اتنی سی چیز میں بھی ہم بے بس ہیں, کمزور ہیں. پھر جب سے ہم پیدا ہوئے, آپ دیکھیں, سبحان اللہ, ابھی تو یہ بات سمجھ آنے شروع ہوئی ہے, لیکن جب پیدا ہوئے تھے تو کچھ بھی پتا نہیں تھا. ہم ایک بیبی کو دیکھتے ہیں, اتنا بے بس ہے, اتنا بے بس ہے, मैं अपने छोटे से बच्चे को देखती हूँ, वो माशाल्लाह 8 महीने का हो गया, कि वो कहीं खड़ा होता है तो गिर जाता है, क्रॉल करने लगता है तो तब गिर जाता है, और उसको ये नहीं पता कि मेरा फायदा किसमें और नुकसान किसमें। उन चीज़ों में जाके हाथ देता है जिन जो उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। मैंने अपने भले बुरे का कुछ भी मालूम है, और इतना कमज़ोर के सिवाय रोने के उसको कुछ पता नहीं है कि मैं कैसे अपनी ज़रूरत का इजहार करूं। तो ये रब ही है ना जो दो दिलों को उसके लिए बेचैन कर देता है, बेकरार कर देता है। ये माँ बाप के दिल है कि जो इतने बेकरार हो जाते हैं, दौड़े फिरते हैं बच्चे के लिए, सारा वक्त ध्यान उसी की तरफ होता है कि कहीं कुछ अपने आप को नुकसान न करे। तो ये रब है जिसने उन माँ बाप के दिल में वो मोहब्बत डाली कि वो मेरे लिए तड़पे, मैं रोया वो रोए, मैं हंसा वो हंसे। वो अल्लाह फरमाता है कि मैं हूं जो तेरी माँ के तेरे बाप के दिल को तेरे लिए बेकरार करता हूँ, वरना कौन है जो तेरे पेशाब पखाने को धोता। अब आप देखिए लड़कियां शादी से पहले कहती हैं, अरे यकी है, ये है, गंदा है ना, हम तो कभी ना हाथ लगाएं। वो बच्चों को बड़ा प्यार करती हैं, लेकिन जूं ही उसके कोई डायपर चेंज करने का मामला आता है फौरन माँ को दे देती हैं। तो आप देखें, चाहे वो भांजे हो, भतीजे हो, कोई हो, कितने भी प्यारे रिश्ते हो, नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला माँ के दिल में कैसी ऐसी शफकत मोहब्बत पैदा कर देता है, तो बच्चे का डायपर लीक कर जाए, वो वॉमिट कर दे, कौन साफ करता है? माँ के सिवा कोई नहीं। कोई औरत रात को जाग सकती है किसी के लिए? कभी भी नहीं जाग सकती। लेकिन अल्लाह ने तेरे लिए तेरी माँ को ऐसा तड़पा दिया कि तेरी माँ तेरे लिए रातों को दूध पिलाने के लिए अपनी नींद छोड़ देती। इसमें माँ को ना देखो, अल्लाह ताला कहता है इसमें मुझे देखो, ये मैं हूँ। मैंने तेरे माँ और बाप के दिलों में तेरी मोहब्बत को ऐसा पेवस्त कर दिया, वरना देखे अपना बच्चा रोए तो सीने में हूक उठती है, हाय मेरा बच्चा, हाय क्या हो गया। माँ बेकरार होके भागती है, और पराया बच्चा रोए तो कहते हैं हाय क्या मुसीबत है, चैन नहीं करने देते। मेरा बच्चा रोए तो मेरा सीना फटने लगता है, दिल तड़पने लगता है, और पराया बच्चा रोए तो कहते हैं सर में दर्द उठ गया। ये मैं आपको वो हकीकत बता रही हूं कि इससे आप समझें कि कोई है जिसने ये मोहब्बत मेरे दिल में पैदा की है, वरना बच्चे तो सारे ही हैं, आप किसी के लिए भी क्यों नहीं तड़पते? क्योंकि कोई हस्ती है जिसने एक माँ के दिल में इस मोहब्बत को पैदा किया, वरना यकीन करें कोई औरत आपकी माँ आपको परवरिश करने के लिए, आपकी तरबियत करने के लिए इतनी मेहनत कभी ना करती, कभी रातों को ना जागती, कभी अपना सुख चैन कुर्बान ना करती, कभी बच्चे को पैदा करने के लिए अपनी इतनी कुर्बानी ना देती कि अपनी उसके जिस्म की सारी ताकत लग जाती है, कभी ना करती, कभी अपने सैर सपाटे कुर्बान ना करती। लेकिन अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह, देखिए इतना मेहरबान है वो रब कि उसने इस माँ को उसकी ममता की वजह से और उसकी ममता के लिए भी जो वो अपने बच्चे पे निछावर करती है उसको अजर दे दिया। एक औरत हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई और कहा कि मैं भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दें। उनके पास 3 खजूरें थी, उन्होंने तीनों उसको दे दी। इस औरत के साथ उसकी 2 छोटी बच्चियां भी थी, उसने एक खजूर एक बच्ची को दी, दूसरी दूसरी को दी, और तीसरी में से अभी गुठली निकाल रही थी खाने के लिए, कि वो बच्चे करते हैं ना फटाफट अपनी चीज खा लेते हैं तो फिर देखना शुरू कर देते हैं, तो बच्चियों ने ऐसे ही किया, अपनी तो खजूरें जल्दी से खा ली, माँ की तरफ देखने शुरू कर दिए। तो माँ ने अभी वो गुठली निकाली थी, उसने जब देखा ना बच्चियां ऐसे देख रही, तो उसने उस एक खजूर के 2 टुकड़े किए और एक आधी एक बच्ची को दे दी, आधी दूसरी को दे दी, और खुद भूखी उठ के चल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आए तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज मैंने एक माँ की ममता देखी है, ऐसे ऐसे हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी इस कुर्बानी पर अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश फरमाई। तो कुर्बान जाए उस रब के, कि जो आप अपने बच्चे के साथ जो रहम का मामला करते हैं, जो मोहब्बत का मामला करते हैं, जो अल्लाह ने ही आपके अंदर रखा, अल्लाह ताला उसके ऊपर भी अजर लिख देता है। दूसरी तरफ अगर वालदेन ज्यादती करते हैं तो उनकी भी पकड़ उस रब ने रखी है। ये नहीं कि तुम जो मर्जी करते रहो, अब तुम्हारा बच्चा, अब तुम जैसे मर्जी करो, आपको पूछने वाला नहीं। नहीं, वो रब देखो इसी से पता चलता है कि माँ बाप से भी ज्यादा, एक माँ की मोहब्बत से भी ज्यादा, 70 माओं की मोहब्बत को मिला ले, 70 का लफ्ज 70 नहीं है, बहुत ज्यादा बताने के लिए, इतनी ज्यादा एक माँ की मोहब्बत कर ले कि कई माओं की मोहब्बत मिल जाए, तो मेरे रब की मोहब्बत उन सबसे ज्यादा है। इसीलिए अगर माँ भी बच्चे से ज्यादती करे, अगर बाप भी बच्चे से ज्यादती करे, तो मेरा रब उस बच्चे की हिमायत में वो खड़ा हो जाता है। सके माँ बाप भी अगर जान के दुश्मन बन जाए, तो वहां रब वकील बन जाता है। इसकी एक मिसाल तो कुरान में ही, वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कि जब वो जिंदा गाड़ी की लड़की उस दिन उठाई जाएगी, तो अल्लाह ताला उसके माँ बाप से नाराज होंगे कि क्यों उन्होंने इसको गाड़ दिया था। उनसे भी नहीं बात करेंगे, इस बच्ची से सवाल करेंगे, तेरा क्या गुनाह था, क्यों इन्होंने तुझे मार दिया। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी, तो फरमाने लगे कि इस्लाम लाने से पहले जमाना जाहिलियत में मेरे यहाँ एक बच्ची पैदा हुई, मेरी बीवी ने इस डर से कि कहीं मैं उसको जिंदा दरगोर ना कर दूं, उसको हमसायों के यहाँ भेज दिया, उनको दे दिया। वो वहां पलती रही और हमारे घर आती थी, और मैं उसे खेलता था और उसको प्यार करता था, हद तक मैं उसे बहुत मोहब्बत करने लगा। बच्ची बहुत प्यारी थी। तो कहते हैं जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई, मुझसे मानूस हो गई, और बीवी ने सोचा कि अब जो है ना इतनी ज्यादा मोहब्बत हो गई है इसको, इस बच्ची से, कि अब ये कभी ये काम नहीं करेगा, तो उसने मुझे एक दिन बता दिया कि तुम्हारी ही बेटी है। अब एकदम वो गैरत जागी, वो जो अंदर उनके होती थी ना जाहिलियत में, कि अल्लाह ये बच्ची बड़ी हो गई और किसी के साथ ब्याही गई, कोई हमारा दामाद बन जाएगा, हम तो नीचे हो जाएंगे उससे। तो ये जो जाहिलियत की वो एक हमीयत, एक गैरत थी, वो अंदर जागी। और ये सहाबी जो थे, सुभान अल्लाह, इतना तैश आया, इतना इस चीज के ऊपर गुस्सा और गम, और कभी ये सोचे कि नहीं मैं इसको छोड़ देता हूँ, और कभी फिर वही गैरत आ जाती थी कि कैसे बर्दाश्त करूँगा, अब ये बड़ी हो रही है। तो कहते हैं कि मैंने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि इसको तैयार कर दो, मैं इसको ना लेके जाता हूँ कहीं सैर कराने के लिए। तो उसने बच्ची को तैयार कर दिया, कहा उसको अच्छे कपड़े पहना दो, अच्छी तरह सजा संवार। जब उसने उसको सजा संवार दिया, मैंने उसकी उंगली पकड़ी और उसको लेकर चल दिया। और कहते हैं कि बार बार मेरे दिल में ये आ रहा था, कभी आ रहा था कि मैं इसको मार दूं, और कभी आ रहा था कि नहीं ऐसा ना करूं। कभी मोहब्बत जोश मारती थी और कभी वो गैरत जोश मारती थी। तो कहते हैं कि मैं उसको लेकर वीराने में चला गया, तो वहां पे गड़ा खोदा और बच्ची को अंदर डाल दिया। और जब मैं उसके ऊपर मट्टी डाल रहा था, तो वो बच्ची अब्बा अब्बा पुकार रही थी। उस बच्ची ने मेरी उंगली पकड़ ली और अब्बा अब्बा पुकारने लगी, और मैं उसके ऊपर मट्टी डालता जा रहा था। ये किस्सा सुना के जब उन सहाबी ने सर उठाया, तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग चुकी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस्लाम से पहले के गुनाहों के ऊपर सजा देने की इजाजत होती, तो मैं सबसे पहले तुझसे शुरू करता। यानी अगर माँ बाप भी जुल्म करें, तो मेरा रब उन माँ बाप के खिलाफ खुद खड़ा हो जाता। अल्लाह ताला ने वालदेन को भी ये इजाजत नहीं दी, भले तुम्हारे अंदर मोहब्बत डाली है लेकिन जुल्म करने की तुमको भी इजाजत नहीं। तो सोचें कि इतना मेहरबान रब जो वालदेन से भी ज्यादा, वालदेन का इसलिए लफ्ज और खास तौर पे वालदा का इसलिए लफ्ज आया कि इनसे ज्यादा इंसान को मोहब्बत करने वाला रिश्ता और कोई नजर नहीं आता। शौहर बीवी का भी रिश्ता एक नाजुक से धागे से जुड़ा होता है, तीन अल्फाज बोलने की देर होती है कि रिश्ता खत्म हो जाता है। बहन भाइयों के रिश्ते भी दूर हो जाते हैं, उनसे भी कई दफा बोलचाल खत्म हो जाती है, कई दफा दूरियां हो जाती हैं, हर एक के बच्चे हो जाते हैं तो हर एक सेल्फिश हो जाता है। लेकिन वालदेन जो होते हैं ना, माँ बाप, और उनमें भी माँ, ये रिश्ता सबसे मुखलिस रिश्ता है इस दुनिया का। और अल्लाह ताला जो इस रिश्ते से भी ज्यादा अपनी मोहब्बत की मिसाल बताते हैं, तो सोचे अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने बंदे से कितनी होगी कि सारी जिंदगी में इंसान अल्लाह की नाफरमानी करे और उसके बाद बोले या अल्लाह, तो ना वो ताना मारता ना वो बुरा भला कहता है, बल्कि वो यही फरमाता है लब्बैक की आबद और मेरे बंदे बता क्या बात है। उस अल्लाह ताला के लिए वक्त निकालना, उसके बारे में जानना, उसको राजी करना, ये हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। हम उस अल्लाह को अपना लें, वो जब कहे हय्या अलल फलाह और हम टस से मस ना हो, एक छोटा सा अफसर कहीं बुला ले तो भागे जाते, और वो रब कहे हय्या अलस सलाह, पांच दफा दिन में निदा है, रब्बुल आलमीन पुकार रहा है आओ मेरी तरफ, और हम हिले तक नहीं, इसका मतलब हमें रब की पहचान नहीं है। आप अगर कोई नौकर रखते हैं और दो दफा उसको आवाज देते हैं, क्या कितनी तनख्वाह में रखते होंगे, 2-3-4 हज़ार रुपए में नौकर आ जाते हैं, दो आवाजें दें वो ना आए तो कहते निकल जाओ यहां से, तो बात ही नहीं सुनते। और सोचे इन आंखों की कीमत सोचे क्या लगाएंगे इनकी कीमत, इन कानों की कीमत सोचे क्या लगाएंगे, इन बारीक बारीक रगें जिनसे खून दौड़ रहा है सोचे इनकी कीमत आप क्या लगाएंगे। आप तो 2-3 हज़ार के नौकर के ऊपर ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो आपकी एक आवाज के ऊपर जी जी बेगम साहब कहे, और नहीं कहता तो दफा हो जाओ यहां से। हाँ, और वो रब पांच बार उसकी आवाज लग रही है और कई बार उसके कलाम की तरफ बुलाया जा रहा है, कई बार कहा जा रहा है, उसके दीन की दावत दी जा रही है, उसकी बात को सुनने के लिए। ये अल्लाह ही की बात है ना, ये कुरान क्या है, मेरी आपकी बातें थोड़े ही है, मेरा रब का कलाम है ना, उसकी तरफ आने की दावत दी जाती है। जिंदगी में कई बार बुलाया जाता है और हम कहते हैं हमारे पास कहां फुर्सत। वो कहता है फबी अय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तुम अपने रब रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे, तुम कैसे ना शुक्रे बन सकते हो, तुम कैसे मुंह मोड़ सकते हो, जिसके इतने एहसानात हैं, तुम क्या ये दुनिया के सारे फरिश्ते भी, ये जो कायनात के जितने फरिश्ते भी हैं ना, ये सारे फरिश्ते भी जो एक पल भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, अगर ये सारे फरिश्ते भी मिल जाएं, अगर ये सारे फरिश्ते भी अल्लाह ताला का हक अदा करने की कोशिश करें, इतनी इबादत वो करते हैं, तो वो तमाम फरिश्ते भी मिलकर अल्लाह का हक नहीं अदा कर सकते। तो कुछ मैं और आप जो दिन में पता नहीं कितनी नाफरमानियां करते, लेकिन वो रब रहीम है, उसका कलाम शुरू ही किस बात से होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसने ये नहीं कहा बिस्मिल्लाही अल कवी अल मतीन, उसने ये नहीं कहा बिस्मिल्लाही अल जब्बार, उसने ये नहीं कहा बिस्मिल्लाह ही और कोई और अल्लाह ताला का ऐसे कोई ऐसी सिफत आ जाती इसकी जगह पे जिसमें कोई सजा देने का पहलू होता, जिसमें कोई अजाब देने की बात होती, जिसमें कोई डरावा होता। अल्लाह ताला अपनी सिफात कौन सी लेकर आए? वो जो अर्रहमान और अर्रहीम है, वो जो अल्हम्दुलिल्लाह है रब्बिल आलमीन है, रब है, पालने वाला है, पालना वाला मोहब्बत करने वाला होता है, मोहब्बत के बगैर पाला नहीं जा सकता। माँ पालती है किस तरह से? मोहब्बत के साथ ना, ये माँ की सिफत है। और अल्लाह ताला ने वही सिफत अपने लिए अपनाई कि रब है, पालने वाला है तुझे तेरा। और कैसे पालता है? सकता है कोई सुतेली माँ हो, वो पाले जरा डांट के डपट के सख्ती के साथ, वो कैसे पालता है आगे ही बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम, वो रहमान भी है, बहुत मेहरबान भी है, बहुत शफकत करने वाला भी है, बहुत रहम करने वाला भी। तो सोचें कि जिसका कलाम शुरू ही मेहरबानी से होता है, शुरू ही मोहब्बत से होता है, शुरू ही प्यार से होता है, उसी रब को हम कहें कि हमारे पास वक्त नहीं उसके लिए, हमारे पास कहाँ ये फुर्सत कि हम उसके लिए तो चंद औकात, चंद अपनी जिंदगी के दिन निकालें। कितना बड़ा जुल्म है उसका रहम, चूंकि उसके उसका गजब भी है, लेकिन उसका रहम ना उसके गजब के ऊपर गालिब है, तो वो ढील देता है, मोहलत देता है। लेकिन कभी उसकी मोहलत को कोई ये ना समझे कि वो पकड़ नहीं सकता। उसकी कितनी बड़ी है सिफत है, देखिए दुनिया में कि जिसके पास पावर होती है ना, अथॉरिटी होती है, वो लाजमी तौर पे जुल्म करने लगता है। तो मेरे पास पावर आ गई, एक दिन दो दिन बड़ी मोहब्बत दिखाएगा, अगले दिन जुल्म पे उतर आएगा। लेकिन वो रब कैसा है, इतनी कुव्वत अल्टीमेट पावर होने के बावजूद वो मुझे और आपको मोहलत दिए रखता है सारी जिंदगी, पकड़ता नहीं है। वरना एक आंख हमारी कुछ गलत देखे, कुछ हराम देखती, तो उसी वक्त हम अंधे हो जाते, हमारे कान कुछ बुराई सुनते तो हम उसी वक्त बहरे हो जाते। कि वो मोहलत देता, वो ऐसे कर सकता है लेकिन वो नहीं करता, कि वो मोहलत देता है। फिर किसी प्यार करने वाले को भी आप पुकारेंगे ना, इवन माँ को भी आप पुकारेंगे अम्मी, वो कहेंगे जी, आप कहेंगे अम्मी, फिर जी अम्मी, फिर जी, आप 5-10 दफा पुकारेंगे ना, उसके बाद वो कहेंगे क्यों सर, क्यों खा रहे हो मेरा सर, ना खाओ, क्या है तुम्हें, जोर से आप झिड़कते। लेकिन अल्लाह ताला वो हस्ती है जिसको जितना पुकारोगे वो हर दफा आपको जवाब दे, ये नहीं कहेगा क्या बकवास है, क्यों ऐसे करते हो, क्यों बार बार मेरा नाम लेते जाते हो, क्या मसला है तुम्हारा, हम तो बच्चों को इस तरह से डांट देते हैं ना, हम तो ऐसे सख्तियां करते हैं। लेकिन वो कहता है लब्बैक लब्बैक लब्बैक, आप सारी रात पुकारते रहे या अल्लाह या अल्लाह। कई दफा इंसान बीमार होता है, तकलीफ में होता है, कोई और नहीं सुन रहा हो, सब सो जाते, इंसान के मुंह से निकल रहा होता है अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। याद रखिए अल्लाह ताला आपकी हर इस पुकार पे जवाब देते हैं, और एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 70 मरतबा, और फिर अगेन वही 70 मरतबा का मतलब क्या, बहुत ज्यादा दफा लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बोल क्या चाहिए, हम बुलाते बुलाते थक जाएंगे, वो जवाब देते देते नहीं थकता। फिर देखिए हमारी क्या आदत है, हम लोगों के ऐब उछालते हैं, उनकी कमियों को हाईलाइट करते हैं, किसी का जरा सा हमें पता चल जाए कि इसके अंदर ये मसला है तो हम भरी महफिलों में उसको एक तरह से बदनाम करते हैं या उसके ऐप खोलते हैं। और मेरा रब कितना बड़ा मेहरबान है, इतने बड़े बड़े मुजरिम होते हैं, हम इतने गुनाह करते हैं, इतने ऐब हमारे अंदर होते हैं, इतनी कमियां हमारे अंदर है। और कई ऐब ऐसे हैं हम खुद भी नहीं जानते, वो जानता है, वो हमारे हर कच्चे छटे को जानता है, लेकिन उनके ऊपर पर्दे डाल देता है। हदीस कुदसी में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे तू दिन रात गुनाह करता है और मैं तेरे गुनाहों को छुपाता हूँ, तू फिर भी मुझसे शर्माता नहीं है, मैं तेरे गुनाहों के ऊपर पर्दे डालता हूँ। बनी इसराइल में ये होता था कि उनके वो गुनाह करते थे ना, तो उनके गुनाह उनके अगले दिन यानी जब सुबह होती थी तो उनके दरवाजों पे लिखे आ जाते और सजा भी लिखी आ जाती थी कि इसने ये गुनाह किया, इसकी ये सजा है। अगर अल्लाह चाहता तो हमारे साथ भी ये कर सकता था कि हम रात को क्या कर रहे हैं, हम अकेले में क्या कर रहे हैं, हम लोगों में बैठ के क्या कर रहे हैं, हम कहीं छुप के क्या कर रहे हैं, हम वेकेशन पे जाते हैं क्या कर रहे हैं, हम जो हमारे कच्चे छुट्टे हैं अगले दिन हमारे दरवाजों पे लिखा हुआ आ जाता, सारी दुनिया में हम बदनाम हो जाते। ये जो हमारे भरम रखे हुए ना हमने, सब खुल जाते। ये जो हम अपनी इज्जतों के अपने वो एक रखा हुआ अपना रख रखाव रखा हुआ लोगों के सामने, आपने एक इज्जत रखी हुई है लोगों के सामने, सारी इज्जत खाक में मिल जाती। इंसान को रोटी ना मिले उसके बाहर रह सकता है, लेकिन वो जलील हो जाए ये उसको बर्दाश्त नहीं होता। कोई उसको किसी मजलिस में नीचा कर दे या दो कलमे ऐसे कह दे जिससे उसकी बेइज्जती हो जाए, सारी जिंदगी उसका मुंह नहीं देखता, पता है इसने मुझे बेइज्जत कर दिया। वो रब देखे जिसने हमारे भरम रखे हुए कि हमारे एक एक गुनाह को जानने के बावजूद वो हमारे गुनाहों को खोलता नहीं है, छुपा देता है, ढांप देता है। हाँ वो अपने मुंह से भले लोगों को बताते फिरे कि मैं तो ये करती थी और वो करती थी, अल्लाह ने ढांप दिया, उसने पर्दे डाल दिए, कितनी बड़ी बात है ना। हमारी जुबान के गुनाह, हमारी आंखों के गुनाह, हमारे कानों के गुनाह, हमारे हाथों के गुनाह, हमारे दिल के अंदर जो बातें हैं, जो नियतें हैं, वो सारी लिखी भी आ जाती, तो हम क्या करते, किधर जाके मुंह छुपाते, किधर रोते, किसको मुंह दिखाते। हमारे तो अपने भी हमें अपने साथ ना बिठाते, हमारे तो सके भी हमसे दूर भाग जाते कि ये थी तुम, ये बनी फिरती और ये निकली। लेकिन वो सत्तारुल अयूब है, उसका नाम है ये, ऐबों को ढांपने वाला, सतर देने वाला। हम नहीं शर्माते, हम गुनाह करते हुए नहीं शर्माते, मगर वो हमारे गुनाहों को अफशा करने से शर्माता है। वो नहीं इनको खोलता, उसका कितना बड़ा एहसान है हम पे। और फिर भी इंसानों का जुल्म देखो कि पैदा उसने किया और सर किसी और के आगे झुकाते हैं, जिंदगी उसने दी और उसको छोड़ के दोस्तियां औरों से लगाते, सेहत उसने दी शुक्र किसी और का अदा करते, रिस्क वो देता है और हाथ किसी और के आगे जाके जोड़ते। ये तो इंसानों का हाल है। वो तो कहता है इन ताउद्दू नियमत अल्लाह ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नियमतों को गिनना चाहो ना गिन नहीं सकते, इतनी बेशुमार उसकी नियमतें। तुम जमीन पे ये चल फिर रहे हो ना, ये उसकी जमीन को बिछाने की वजह से तुम चल फिर रहे। अलम नजाल अर्द मिहादा, हमने जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना नहीं बना दिया। उस अगर वो ना चाहता, अगर उसकी चाहत ना होती, तुम यहाँ पे चल फिर ना सकते। तुम्हारा चलना उसके इस जमीन को बिछाने की वजह से है। वो कहता है हमने बिछाई, मैंने बिछाई है ये, वल जिबाला औतादा, तुम्हारी तो जमीन हिलती रहती, ये तुम्हारा जमीन के ऊपर पुरसकून जिंदगी गुजारना इसलिए कि मैंने इसमें पहाड़ गाड़ दिए। फिर तुम यहाँ पे बोर हो जाते, अकेले होते तो कैसे तुम रहते यहाँ पे। वखलकनाकुम अज़वाजा, ये मैंने तुम्हारे लिए जोड़े जोड़े पैदा कर दिए तुम्हें, कि तुम्हारी तुम्हारी बोरियत ना हो, तुम एक दूसरे से अपना दुख सुख कर सको, शेयर कर सको, तुम्हें कंपनी मिले, साथी मिले। फिर वह जालना नौमा कुम सुबह था, ये जो तुम रात को बिस्तर पे जाते हो ना और तुम्हें नींद आ जाती है, तो तुम्हारा ये आराम, तुम्हारी ये नींद इसलिए है कि मैंने नींद को तुम्हारे लिए आराम की चीज बना दिया। ये नींद मेरी मखलूक है, मैं इसको भेजता हूँ। वजाल्ला लैला लिबासा, और रात को तुम्हारे लिए कर दिया। तुम ये सोचते हो खुद ब खुद ही लाइटें ऑफ हो गई, खुद ब खुद सूरज निकल रहा और गुरूब हो रहे, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए रात को लिबास बना दिया। वजाल्ला नहारा माशा, और तुम सोचते हो कि दिन में काम काज करना और दिन में रोटी रोजी कमाना, इसमें तुम्हारा कोई कमाल है? नहीं, तुम्हारा ये कमाइयां करना इसलिए है कि मैंने दिन को निकाला, रोशन कर दिया। वजालना फीहा, वो अच्छा वो बनाई ना फौकुकुम सबन शिदादा, ये जो तुम्हारे ऊपर आसमान की छत है, कि तुम्हारे पास ये सूरज की जो ऐसी शुआएं हैं जो खतरनाक है, वो तुम्हारे तक नहीं पहुंचती, इसलिए कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसी छत बना दी, ये ओजोन लेयर और आसमान की छत, ये तुम्हारे लिए तान दी। वजालना फीहा सिराजों वहा जाए, ये तुम्हारे लिए जो सूरज है, चमकता हुआ सूरज, ये तुम सोचते तुम्हारी गंदम ऐसे ही पक जाती है, ये मैंने बावर्ची रख दिया, ये कुक है, ये तुम्हारे लिए चमका दिया, तुम्हारे घरों को लाइट दे दी, रोशनी दे दी, इतना बड़ा बल्ब जला दिया, तुम्हें मुफ्त दे रहा रोशनी। तो ये बल्ब इसको कह ले, जनरेटर इसको कह ले, बावर्ची इसको कह ले, हीटर इसको कह ले, कोई भी नाम दे दे, इतने सारे इसके काम है, इसके पैसे तुमसे नहीं लिए। ये जो तुम्हारा सारा निजाम इस सूरज के चमकने से चल रहा है ना, ये तुम्हारा सारे काम इसलिए हो रहे हैं कि मैंने इस सूरज को पैदा किया और तुम्हारे लिए चमकाया। और फिर सूरज भी होता, चांद भी होता, दिन रात भी होता, पानी ना होता तो क्या होता? पानी ना होता तो मुझे और आपको तो अपने आप से भी घिन आ रही होती, नफरत आ रही होती। अंजलना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा, मैंने मूसलाधार बारिश बरसाई तुम्हारे लिए, और इसकी स्पीड भी ऐसी रख दी, वरना जिस स्पीड से गोली चलती है, इस स्पीड से इसने जमीन पे आना था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके लिए स्पीड ब्रेकर रख दी। अगर अल्लाह ताला स्पीड ब्रेकर ना रखता, इसकी स्पीड को ना तोड़ता, तो पता है क्या होता? ये बारिश के कतरे बुलेट्स की तरह हमारे सरों पे पड़ते। जैसे समझ लें आप नियाग्रा फॉल के नीचे खड़े हो जाए, तो नियाग्रा फॉल के नीचे जो खड़ा होगा तो मर ही जाएगा ना, इसी तरह फसलों पे ऐसी बारिश पड़ती तो फसलें तबाह हो जाती, सड़कें बर्बाद हो जाती, हर चीज खत्म हो जाती। अल्लाह ताला ने उसकी स्पीड कम कर दी, तुम्हारे लिए किया। लिनुखरिजा बिही हब्बन, ताकि तुम्हारा गल्ला इससे निकले, ये बारिश के पानी से तुम्हारा गल्ला इसलिए निकलता है कि मैंने बारिश बरसाई, और नबाता और सब्जा इसलिए निकलता है कि मैंने पानी बरसाया, और जन्नत अलफाफा, तुम्हारे घने बाग इसलिए लहला रहे कि मैंने आसमान से इस पानी को उतारा है। अल्लाह इतना कुछ करता है, तुम एक तुम्हारे लिए कोई नौकरी लगवा दे, तुम्हें तुम्हारे घर में खाना भेज दे, तुम्हें वीजा दिलवा दे, तुम सारी जिंदगी उसका एहसान मांगते हो। इतना हम तो झुक झुक के सलाम करते हैं कि तकरीबन रुकू में ही चले जाते हैं, और अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं, उसने तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा है, उसका एहसान नहीं मांगते। सबके लिए वक्त निकालते हैं, सबको अहम समझते हैं, सबके लिए अपनी जिंदगी में से फुर्सत के लम्हात डेडिकेट करते हैं, और सबकी इताअत करते हैं, मानते, चाहे औलाद है, चाहे शौहर है, चाहे माँ बाप है, सबकी मानेंगे, नहीं मानते तो अल्लाह की नहीं मानते, और नहीं फुर्सत निकालते तो उसके लिए नहीं निकालते, नहीं आते तो उसकी तरफ नहीं आते। इसीलिए कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे और फरमाएंगे, उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फुरकान में, या रब इन्नकौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ऐ मेरे रब, मेरी इस कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। महजूर हिजरत से है ना, ये लफ्ज़ हिजरत क्या होती है, सबको ये हिजरत का माना पता है, छोड़ देना, लीव बिहाइंड कर देना, इग्नोर कर देना। मेरी इस कौम ने, मेरे इन लोगों ने اس قرآن کو اس ہاد القرآن فرمایا، یعنی قرآن بھی وہاں پہ کھڑا ہوگا اللہ کی عدالت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اور حاضر سے کیا پتا چل رہا ہے، یعنی یہ قرآن ان کے سامنے تھا، وہ دور نہیں تھا ان سے، لیکن اس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ شکایت کریں گے۔ اس چیز کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شکایت کر دیں اس دن، اس کا کیا بنے گا؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کا ناظرہ کر پڑھ لیا، ہم اس کی ہر صبح ایک صفحہ پڑھ لیتے ہیں، رکوع پڑھ لیتے ہیں، ہم نے تو اس کو چھوڑا نہیں ہوا، لیکن کیا واقعی ہمیں اس قرآن کو صرف تلاوت کر کے، کیا واقعی ہم نے اس قرآن کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہم نے اس سے اتنی محبت کی ہے جتنی ہم اپنی جاب سے کرتے ہیں، یا جتنی ہم کسی ناول افسانے کو پڑھنے کے لیے لگاتے ہیں اپنا وقت، کیا اتنا وقت اس کے ساتھ لگایا، اتنا شوق اس کا رکھتے ہیں جتنا ہم شاپنگ کا رکھتے ہیں، اس کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں، جتنا ہم موویز کے لیے نکالتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے ہماری محبت اس کتاب کے لیے اتنی ہے جتنی پیسوں کے لیے، کہ پیسے مجھے مل جائیں؟ کیا ہم واقعی اسی طرح بننا چاہتے ہیں جیسے یہ کتاب ہمیں چاہتی ہے کہ ہم بنیں؟ نہیں، ایسا ہے، ہم نے اس قرآن کو واقعی چھوڑا ہے، اور ایسے چھوڑا ہے کہ آپ پلٹ کے اس کی طرف، آج جہالت اسی وجہ سے ہے نا، پلٹ کے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے، کوئی بلائے تو اس کی طرف آنا نہیں چاہتے، اور بہت دفعہ بلایا جاتا ہے، بہت دفعہ کہا جاتا ہے، لیکن ہم اس کلام سے جو اس رب کا کلام ہے، جو ایسا مہربان ہے کہ اس سے زیادہ محبت کرنے والا آپ کہیں نہیں پاؤ گے، جو ایسا رحیم ہے اور ایسا کریم ہے، اس کے جیسا دوست کہیں نہیں پاؤ گے، ہم ایسے محسن کو چھوڑ کے اور ٹھیکریوں کے پیچھے جاتے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں، ان کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ آج اس رب کی محبت اتنی سی بھی ہمارے دل میں نہیں ہے کہ اس کے فراق میں، اس کی جدائی میں، اس کی یاد میں کبھی ہماری آنکھیں بھر آئیں، یا اس کی محبت میں کبھی ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو، کبھی کوئی درد دل میں اٹھے۔ یہ امت تو وہ تھی جس کے نوجوان ایسے ہوا کرتے تھے کہ قرآن پڑھتے تھے نا، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو ان کی تلاوت پہ، ان کے رونے سے فرشتے رو دیتے تھے۔ اس امت کی لڑکیاں وہ تھیں کہ جن کی پاکدانی پہ فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج دیکھ لیں آج کیا حالات ہو گئے، آج وہ نوجوان ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں گٹار ہیں، اور لڑکیاں وہ ہیں جو ان کے دیکھیں تو شادیوں پہ وہ ناچ ناچتی ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا، آج ہمیں ہر مووی کا پتہ ہے، ہر نئے گانے کا پتہ ہے، ہر لیرکس ہمیں زبانی یاد ہے، لیکن اللہ کے کلام سے اتنی دور ہے کہ وہ نہیں پتہ کہ کیا ہے۔ ساری دنیا کے لیے ہم قربانیاں دے لیں گے، ان کے لیے ہم گھڑیاں نکال لیں گے، ان سے بات کرنے کے لیے ہم فرصت نکال لیں گے، فونوں پہ ہم کتنی کتنی لمبی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن اس رب کو جس کے احسانات تلے ہمارا رواں رواں دبا ہوا ہے، جکڑے میں ہم اس کے احسانات تلے، اس کے لیے چند گھڑیاں بھی فرصت کی نہیں نکال سکتے۔ اس اللہ کے لیے وقت نہیں نکال سکتے جس کی دی ہوئی یہ زندگی ہے، جس کی دین ہے یہ، اگر اسی کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تو پھر اس کی زمین کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، اس کی دی ہوئی چھت کے علاوہ کوئی اور چھت ڈھونڈ لو، اس کے دیے ہوئے سورج کے علاوہ کوئی اور سورج نکال لو، اس کی دی ہوئی نیند سے اب سونا نا، یہ تو نیند اسی کی مخلوق ہے، اس نے دیے اب کیوں استعمال کرتے ہو؟ اس کے لیے تو آپ کے پاس وقت ہے نہیں، اس کے دن اور رات بنائے ہوئے، ان کے اندر اپنی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ اپنے کوئی اور دن اور رات لیا، उसके आसमान तले ना रहो, उसकी जमीन के ऊपर जिंदगी ना गुजारो, जाओ कायनात के किनारों से निकल जाओ, कहीं कहीं और जाके बसो, मगर ऐसी एहसान फरामोशी तो ना करो। एहसान फरामोश इंसान, बेवफा इंसान दुनिया में भी आप किसी रिश्ते में बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, और रब के साथ बेवफाई, जिसकी सबसे ज्यादा मोहब्बत है, क्या उसी के साथ बेवफाई? क्या उसी को पीछे करके सारी दुनिया को आगे करना है हमने? जबकि वो कहता है तुमने सारी दुनिया के लिए तो वक्त निकाला, ठीक है उनके लिए तुम बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी देते रहे, लेकिन एक दिन अपने अंदर ये तहिया भी करो कि आज मैं आज से अपनी जिंदगी अपने रब के लिए गुजारूंगी। किसी एक दिन ये भी तो सोचो इस बेवफा दुनिया के लिए जिसने तुझे छोड़ जाना है, वो ना भी तुझे छोड़ेगा, तू उसको छोड़ जाए तो इसके लिए अल्लाह को छोड़ रहा, ये कहाँ की अकलमंदी? वो जो कफा बिल्लाही वलिया, जो कहता है कि अल्लाह काफी है दोस्त, सारे जहान से तुमने दोस्ती कर ली, अब अल्लाह से दोस्ती करके देखो वो कैसा दोस्त साबित होता है, तुम्हें पता चलेगा। कफा बिल्लाही वकीला, तुम अपने मसले लेके वकीलों के पास जाते हो और लोगों को अपना वकील बनाते हो, अल्लाह को अब अपने मामला सुपुर्द करके देखो वो कैसा वकील है, तुम्हें खुद वो बताएगा, वो खुद साबित कर देगा। फिर इंसान कितना ही ऊंचा उड़ जाए, गम उसका पीछा नहीं छोड़ते। कफा बिल्लाही नसीरा, उससे ज्यादा बढ़ के मददगार कोई है ही नहीं, वो काफी है मददगार, उसको तो अपना चारा घर अपना मददगार बना के देखो। तुम्हारे किसी मसले का हल ना तुम्हारी औलाद के पास, ना शोहर के पास, ना पेरेंट्स के पास, किसी के पास भी नहीं होगा, ना किसी दोस्त के पास, किसी के पास नहीं। तुम्हारे हर मसले का हल उसके पास है, वो हल कर सकता है, उसने सिर्फ क्या कहना है, दो हर्फ कहने हैं, कुन हो जा, वो हो जाएगा। फिर तुम कहते हो मैं अपनी बातें किसको सुनाऊं, अपने दुखड़े किसको सुनाऊं, अपनी कहानियां किसको सुनाऊं? बच्चों के पास बैठते हैं, वो कहते हैं हमारे पास अभी टाइम नहीं। हस्बैंड कहते हैं सुबह से मैं अब थक के आया हूँ, अब तुम अपनी कहानियां शुरू हो गई। कोई किसी के पास फुर्सत नहीं है, और खास तौर पे इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती फिर तो किसी के पास भी टाइम नहीं रहता कि आपके लंबे लंबे किस्से सुनो, हर कोई जान छुड़ाता है। अल्लाह कहता है मुझे आके सुनाओ, मैं हर बार तेरे साथ हूँ, मैं दूर जाता ही नहीं, तो जब पुकारेगा जब बुलाएगा। कितनी लंबी दास्तानें सुना, अंधेरा हो उजाला हो दिन हो रात हो अकेले में हो सबके बीच में बैठा, मुझे पुकार के तो देख। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तेरी शहरक से भी ज्यादा तुझसे करीब है। वो बुलंद तो इतना है कि अर्श पे मुतमक्किन है, और करीब इतना है कि शहरक से भी ज्यादा नजदीक। उस रब को पुकार के देखो तो सही, वो कैसा साबित होता है, कभी आजमा के तो देखो। और उसको जरूरत किसी की नहीं, लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, उसके लिए मशरिक और मगरिब है। अब कभी हम सोचते हैं हाय ये मेरी दुआ कैसे कबूल हो, मेरे एक मसला कैसे हल हो, अब ये तो कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अल्लाह के लिए हर चीज मुमकिन है, वो चाहे तो हाथी वालों को भी अबाबिलों से पिटवा दे। तेरे हर मसले का हल तेरे रब के पास है। लहू मा फिस समावाती वल अर्द, उसी के लिए जो आसमानों में और जमीन में, वो माँ बहना हो मार जो इनके दरमियान है, जब सब कुछ उसका सबका मालिक वो है तो जो चाहे तुझे दे दे, वमा तख्ता फरा और जो जमीन की तहों के अंदर है वो भी उसी का है। माशा अल्लाह कहना वमा लम्यशा लम्यकुन, जो वो चाहता है वो चाहता है, और जो लम्यशा नहीं चाहता लम्यकुन, वो नहीं होता। इस कायनात में तो उसी की चाहत चलती है, तो फिर अगर अपने काम संवारने हैं तो उसी के पास ना जाए, हमारे मसलों का हल फिर उसी के पास नहीं? सारी दुनिया इस वक्त मसलों में, हर एक से पूछो ना वो कहता मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो कहेगा नहीं मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक का दुखड़ा, मर्द ले लो, औरतें ले लो, बच्चे ले लो, कोई बूढ़ा ले लो, जवान ले लो, हर एक का मसला है। कोई अमेरिका में रहने वाला ले लो या अफ्रीका में रहने वाला ले लो, हर एक कहता मेरे प्रॉब्लम है। अमीर ले लो या गरीब ले लो, कोई बादशाह भी लेंगे ना तो वो भी उसी से भी पूछेंगे, वो भी कहता मेरे मसले हैं। हर एक मसलों में घिरा हुआ है, लेकिन हर एक ये समझता है कि शायद हमने अपने मसले खुद ही हल कर लेने, हमारे मसलों का हल हमारे अपने पास है, हमारे अपने पास नहीं है। ऐ दुनिया के इंसानों, उस रब को बीच में लाओ जिसको तुमने निकाला हुआ है अपनी जिंदगी से, वो तुम्हारे मसलों का हल जानता है, उसके पास है, वो हाकिम है, वो हर चीज का मालिक है। वो चाहे तो तुम्हारे मसलों को कुन कह के लम्हे भर के अंदर तुम्हारे सारे मसलों का हल कर, उसके पास तुम्हारे दिलों की दवा है, जो तुम्हारे दिल बेचैन है इनकी भी दवा उसी के पास है। तो ये आप बड़े बड़े मशहूर लोगों को देख लें, इतने सेलिब्रिटीज हैं, उनसे पूछे कि भाई आप खुश हैं, कहते नहीं हमारे बड़े मसले हैं, दिल का सुकून नहीं है, चैन नहीं है, रात को गोलियां खा के सोते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अला अला अला, सुनो ऐलान, सुनो ऐलान। ये अला का लफ्ज है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ऐसे जैसे पूरे शहर में एक लाउड स्पीकर लग गया, उसकी गूंज है और हर तरफ अला अला अला, कि सुनो सुनो सुनो, क्या सुनो, अला भी जिक्रिल्लाहि तस्मईनुल कुलूब, सुन लो अल्लाह का जो जिक्र है वो दिलों को सुकून देता है, वो दिलों को सुकून देता है। अल्लाह ताला बता रहे हैं सुन लो, मेरी याद से ही तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम सारी जहान के आराम के सामान अपने घर में जमा कर लो, पूरी दुनिया के खूबसूरत जोड़े ब्रांड नेम अपनी अलमारियों में सजा लो, दुनिया जहान के हीरे मोती जेवरात जमा कर लो, जायदादें बना लो, कोई अपार्टमेंट यहाँ कोई पाकिस्तान में खरीद लो, सारे ऐश आराम के असबाब तमाम तुम्हारे पास आ जाए, फिर भी सुकून कहीं नहीं मिले। कहीं सुकून चैन मिल जाए तो रब का कलाम तो फिर नाउजु बिल्ला वो तो बात गलत हो गई। रब की बात कभी गलत नहीं हो सकती, जब उसने फरमा दिया कि इसी में सुकून है तो सिर्फ उसमें सुकून, सिर्फ उसकी याद में सुकून, सिर्फ उसकी याद दिलों का मरहम, दिलों का चैन है, दिलों का सुकून है। अगर आप कहते किसी और चीज में सुकून, मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे ना, फिर चैन की जिंदगी गुजारनी, वो चैन नहीं मिलना, उतने पैसे मिल भी जाए नहीं मिलेगा चैन। हाँ मेरा बड़ा घर हो जाए ना, फिर सुकून आ जाएगा, उन्हें सुकून फिर भी नहीं मिलेगा। हर नेमत के साथ आप देखें, हर फूल के साथ कांटे, हर नेमत के साथ मसले आ रहे, छोटे घर के छोटे मसले, बड़े घर के बड़े मसले। बच्चे बड़े हो जाए ना, फिर सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। बच्चे बड़े हो जाते तब भी बेसकून होंगे, तब भी रातों की नींदें हराम होंगी। तो याद रखना अल्लाह का जिक्र ही है तो ये तुम्हारे अंदर को सुकून से भर देगा। लेकिन ये जिक्र ये नहीं है कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की बस तस्बीहां मैं तो करती हूँ, ये तो बस जिक्र हो गया, नहीं। जिक्र है याद, याद जिसे अंदर टूट जाए और एक नया इंसान बन जाए, ये मेहनत के बगैर नहीं आता, इसके लिए अपने दिल का रुख अल्लाह की तरफ करना पड़ता है, कुरान के साथ मेहनत करनी पड़ती है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी कोई मेहनत करेगा उतना फल पाएगा, उतना उतना उसको सुकून मिलता जाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा नुस्खा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं 200-250 डॉलर दे के आप ना एक वो प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, अल्लाह ताला ने आपको सुकून का नुस्खा मुफ्त कुरान में बता दिया है कि सुकून लेना चाहते हो अल्लाह की याद की तरफ आ जाओ, अल्लाह के आगे झुक जाओ, और जो अल्लाह के आगे झुक जाएगा, जो अल्लाह की याद करेगा, जो अल्लाह ताला के कुरान का अपना साथी बना देगा, उस पे पहला इनाम अल्लाह ताला ये फरमाएंगे कि उसके दिल को चैन से भर दे। तो अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया सबके लिए, अब इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, जिस जिसने सुकून पाना है ना वो इधर आ जाए। याद रखें ये बैंक बैलेंस, ये घर, ये जेवरात, ये चीजें जो है ना, शैतान ये दिमाग में डालता है कि तुझे इज्जत मिल जाएगी, तेरा सारे मसले हल हो जाएंगे, तुझे ये हो जाएगा, इतने पैसे बसा जाए तो ये हो जाएगा, ये मसला हल हो जाएगा। वो कोई मसले नहीं हल होने, ये शराब है, शराब। मेराज होता है ना, मेराज शराब, तो पता है आपको, ये शराब है, ये नजर आता है कि पानी है पानी, अब इंसान उसके पीछे भागता है भागता है भागता है। अब कोई अकलमंद कहता है भाई देखो ये पानी नहीं है, ये तो शराब है, ये दौलत, ये पैसे, ये शानो शौकत, ये बड़ी जॉबें, ये इससे तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। वो कहता चलो जाओ जाओ जाओ, ऐसे ही तुम कह रहे हो, तुम चाहती हो कि मुझे ना मिले ये चीजें, मुझे तो खुद नजर आ रहा है कि वो सामने इसके अंदर ही सुकून है, तुम ऐसे ही मुझे बहका रही हो। वो कहता मुझे पानी नजर आ रहा है, ये मेरी प्यास बुझाएगा, तुम मुझे बहकाते हो। वो अकलमंद कहता नहीं, तेरी आंखें धोखा खा रही है, ये फरेब है, ये शराब है, मत जा इसके पीछे, ये पानी नहीं है, प्यासे ही रह जाओगे। लेकिन वो दौड़ने वाला कहता है नहीं, हम बड़े अकलमंद हैं, हमारे पास इतनी डिग्रियां, आखिर हम पढ़े लिखे नहीं है, हम बड़े समझदार हैं, और तुम समझते हमें कुछ पता नहीं है, हम सब जानते हैं। किसी की नहीं सुनता वो भागने वाला, भागता ही जाता है भागता ही जाता है भागता ही जाता है, और यकीन करें भागते 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 जिंदगी की शाम हो जाती है, शाम हो जाती है, ये दौड़ नहीं खत्म होती। मित से लिखवा ले आज, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होनी, कभी नहीं खत्म होनी, जब तक आप खुद इस दौड़ से ना निकलेंगे ये नहीं खत्म होनी। अगर आज आपका एक टारगेट है ना तो मुझे ये मिल जाए, तो बस उसके बाद फिर अल्लाह की तरफ आऊंगी। वो शराब है, वो जो आप भागते जा रहे हैं भागते हैं, वो और आपको आगे नजर आएगा, वो बस वहां तक बस, फिर आप और भागेंगे, वो उससे और न, डेजर्ट में देखा ना आपने, ऐसे ही होता है ना, यहाँ बहुत गर्मी में आप देखिए आप गाड़ी चला रही होती, ऐसे लगता है पानी ही आगे पानी, आप जितना आगे जाते जाते वो और आगे जाता जाते, इसी तरह सारी जिंदगी गुजर जाती है। बहुत लोगों को देखा है ऐसे, जिंदगी की शाम हो जाती है, जब शाम हो जाती है सामने मौत खड़ी होती है, और जिंदगी सारी गुजार चुके आप, अब क्या करें, अब दिल चाहता है ओहो अब समझ आई, ये तो शराब था, ये मैंने क्या किया, अब पीछे मुड़ती हूँ, लेकिन आगे क्या लिखा है, नो यू टर्न, आगे लिखा है पीछे मुड़ने का अब कोई रास्ता नहीं है, अब वापिस नहीं जा सकते। हाय हाय कहाँ पहुंच गए कि अब वापसी का भी रास्ता बंद हो गया, अब तो आगे ही है खड़ा, एक गड़ा कब्र का, उसमें गिरना, उसके सिवा और कोई चारा नहीं, अब सिर्फ हसरत ही हसरत है। फिर इंसान याद करता है कितने सुनाने वालों ने सुनाया, कितने बुलाने वालों ने बुलाया, मगर मैंने ही झटक दिया, मैंने ही कान नहीं धरे, कितने रोकने वालों ने मुझे रोका लेकिन मैंने ही परवाह नहीं की। अल्लाह ताला कहते हैं तुम दुनिया के रंग में रंगे हुए हो, तुम इसमें रंगना पसंद करते हो, हालांकि मन अहसनु मिन अल्लाह हिस्से बगा, अल्लाह के रंग से अच्छा रंग किसका है, उसका रंग सबसे पक्का है, ये दुनिया के रंग है ये तो आज चढ़ता है कल कच्चा रंग है कल उतर जाए, अल्लाह का रंग बड़ा पक्का है, इसमें रंग जाओ, और उसका रंग क्या है, उसका रंग क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे वो रंग चढ़ा हुआ था अल्लाह का रंग, वो क्या था, किसी ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से जब पूछा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी ना, तो क्या बताया था उन्होंने कैसी थी, फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे, चलता फिरता कुरान। तो इस कुरान की तरफ आओ, ये है पक्का रंग, रब की तरफ आ जाओ, और रब वाले बनने का तरीका क्या है, ये कुरान के साथ जुड़ना, कुरान के साथ जुड़ो, कुरान के साथ वक्त लगाओ, जितना जितना कुरान के साथ वक्त लगाते जाओगे उतने ही रब वाले बनते जाओगे। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कूनू रब्बानीयूना, हो जाओ रब्बानी, रब्बानी बन जाओ, रब वाले बन जाओ। और रब वाला कैसा होता है, रब वाला वो होता है जिसके ऊपर रब का रंग चढ़ जाए, यानी उसके दिल में रब की इतनी मोहब्बत हो, इतनी मोहब्बत पैदा हो जाए कि उस वो सारा रब की मोहब्बत में नहा जाए, उसको रब के सिवा और कोई नजर ना आए। अल्लाह ताला ये भी फरमा सकते थे कूनो मुस्लिमीन, कूनो मुमिनीन, कूनो कानितीन, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कौन बन जाऊं? रब्बानी क्यों बन जाऊं, रब वाले बन जाऊं। कितना प्यारा ये लफ्ज है, रब वाले, यानी जिसका ताल्लुक रब के साथ जुड़ा। तो हमारा मकसद यही है कि आपको रब्बानी बनाए, आपके दिल के अंदर अपने रब की मोहब्बत ऐसी पैदा हो जाए कि उसकी मोहब्बत के सिवा किसी और की मोहब्बत ना हो जो उसकी मोहब्बत से ऊपर, उसकी मोहब्बत के सिवा कोई और मोहब्बत ना हो जो उसकी जगह ले ले, क्योंकि वो ही इस लायक है कि उससे मोहब्बत की जाए, सबसे बढ़ के मोहब्बत की जाए। तो अपने रब की तरफ आए, हमारा पैगाम यही है कि हम अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अगर आप आएंगे तो अपने लिए भला करेंगे, उन हसरतों से बच जाएंगे जो हसरतें लोगों को आखिरी उम्र में आके होती हैं। अगर रब वाले बन गए तो फिर आपको किसी तकलीफ के बगैर, एक होता है ना, अब हम एक तकलीफ के साथ, एक तकल्लुफ के साथ हम अल्लाह की तरफ जाते हैं, बेसाख्ता उठ के नहीं भागते। अगर आप रब वाले बन गए ना तो कोई तकलीफ नहीं आपको उठानी पड़ेगी अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए, अल्लाह के किसी हुक्म को मानने के लिए, फिर बेसाख्ता होगा। जैसे जैसे माँ है उसकी तरफ बच्चा क्या बेसाख्ता बढ़ता है ना, कोई कहता तो नहीं है माँ की तरफ जाओ, भागता है बच्चा माँ की तरफ। तो इसी तरह जब इंसान रब वाला बन जाता है ना तो बेसाख्ता रब की तरफ दौड़ता है, फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं होती। तो रब वाले बने, अल्लाह ताला हमें भी रब्बानी बना दे, हमें अल्लाह ताला कबूल कर ले अपने रास्ते। तो आज का पैगाम यही है, अगर आपने ये इरादा कर लिया है कि आप कुरान पाक से जुड़ेंगे, इससे ताल्लुक रखेंगे, और देखिए आपने जितना ज्यादा रब वाला बनना है ना उतना ज्यादा आपको कुरान वाला बनना है, कुरान से जितना आपका ताल्लुक मजबूत होगा उतना ही ज्यादा आप रब वाले होंगे, उतना ही आपके ऊपर सिबगतुल्लाह होगा, अल्लाह का रंग होगा। फिर कोई आपको देखेगा ना तो उसको अल्लाह याद आ जाएगा, और यही इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है। कैसे पता चलेगा अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है? कि आपको देखकर अल्लाह याद आ जाए, जब लोग आपको देखे ना उनको अल्लाह याद आ जाए। ये कैसे होगा? कि जब आपके ऊपर अल्लाह का रंग होगा, जब आप रब्बानी होंगे, तो ये सिर्फ उसके कलाम से हो सकता है, बस यही उसका जिक्र है, यही आपके दिलों का सुकून है, इससे दूर ना भागे। तो जो इसका इरादा कर चुकी हैं वो दुआ करें कि अल्लाह ताला साबित कदमी दें, कि इसकी तरफ लोग जज्बाती होकर आ तो जाते हैं, तो उसके बाद जब अपनी दुनिया में लौटते हैं तो शैतान कहता है वो ये छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा, इतना वक्त लगा रही हो इसके लिए, इसकी जगह तुम इतने पैसे कमा सकती थी, तुम्हें ये जॉब मिल सकती थी, तुम्हें ऐसे हो सकता था, तुम्हारे ये काम तुम्हारे अधूरे रह जाएंगे, इतना डराता है इंसान भाग जाता है। तो ये दुआ करें अल्लाह इस्तकामत देना इस रास्ते में, जिन्होंने इरादा अभी तक नहीं किया वो आज कर ले, और इतनी बड़ी खैर से खुद को महरूम ना करें, इतनी बड़ी खैर मिल रही है इस खैर का अंदाजा आप नहीं कर सकते, इस खैर को अपनी जिंदगियों में दाखिल होने दें। अमन शाह अमिनकुम अय्यस्तकीम, तुम में से जो चाहे सीधे रास्ते की तरफ आ जाए, अल्लाह ताला ने तो खुला सबको इन्विटेशन दिया, सबके लिए इन्विटेशन, तो जो आना चाहता है वो आए इस दुआ के साथ कि अल्लाह तू हमें कबूल कर लेना। अब आना इरादा करना हमारा काम था, इस्तकामत तू अता फरमा देना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين.